मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 22 मई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मुझे कुछ सूचनाएं देनी होती हैं। सूचना ये कि कल परसों और नर्सों जिसे नर्सों कहते हैं यानी कि सोमवार को भी डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा। सोमवार को क्यों नहीं आएगा आप जानते हैं, गजटेड हॉलीडे है। इस दिन 3 दिनों तक डेली ऑडियो लेक्चर आपको नहीं प्राप्त हो सकेंगे, लेकिन कल बकायदे आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी और इसी तरह से सोमवार को भी आपको प्रेस क्लिपिंग्स मिलेंगी और साथ ही कल आपको एक वीकली क्वेश्चन भी मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर प्रैक्टिस करने के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों आइए इससे पहले कि मुख्य विषय पर आएं कुछ न्यूज़ को देख लेते हैं और आज मुख्य विषय के तहत मैं कृषि की संभावना विषय पर आपसे थोड़ी सी कुछ बातें करूंगा। न्यूज़ में आपने सुना होगा कि जो अमेरिका है, अमेरिका की जो सीनेट है उसने एक विधेयक पारित किया है। मैं विधेयक पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अब ऐसा लग रहा है कि चीन और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वार है और जो दूसरे तरह के इस तरह के जो युद्ध वाली स्थिति होती है वो बनती चली जा रही है। लेकिन मैं उस वार की बात नहीं कर रहा हूँ जो मैदान में हथियारों के द्वारा लड़ा जा रहा है, लेकिन जो दोनों के बीच में तनाव की स्थिति खासकर कोरोना वायरस को लेकर के जिसकी शुरुआत हुई थी अब वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और आपने देखा ही है कि किस तरह से WHO पर की बकायदे जाँच पड़ताल होने की बात हो गई है और उसकी शुरुआत एक प्रकार से अमेरिका ने ही की थी, जिसको लेकर के चीन डेफिनेटली अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं तो परेशान होगा ही, क्योंकि कोरोना वायरस के मामले में अब चाहे आगे जो भी निष्कर्ष निकले हम नहीं जानते हैं, लेकिन चीन की काफी बदनामी विश्व स्तर पर हो रही है। और दोस्तों और सच पूछे तो भारत ने भी चूंकि WHO के जांच पड़ताल की मांग की है तो इससे चीन की थोड़ी सी नाराजगी भारत के प्रति भी है और इसी के परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे सीमा क्षेत्रों में थोड़ी सी अलग किस्म के तनाव की स्थिति बन गई है जो चीन से सटा हुआ हिस्सा है। और फिर इधर नेपाल भी अब थोड़ा सा अपनी आंखें उठा रहा है, गर्दन उठा रहा है और कहा जा रहा है कि चीन का जो हाथ है उसकी पीठ पर है और चीन की शह पर नेपाल ऐसा कर रहा है। इसके बारे में हम लोग इससे पहले थोड़ी सी बात कर चुके हैं। दोस्तों WHO से ही जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा अब सामने आ रहा है, वह है ताइवान के प्रवेश को लेकर। अभी पर्यवेक्षक के रूप में बहुत से देशों ने यह मांग की है कि ताइवान को भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाए। तो ये दरअसल है क्या, आइए थोड़ा सा इसे जान लेते हैं। यहां मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा और सॉरी कि ये निर्देश मेरे ऑनलाइन के जो पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए है और दोस्तों ऐसा इसलिए कि उस तरह के लेक्चर्स उन्हीं को अवेलेबल है, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि सॉरी। आप वर्ल्ड हिस्ट्री में जाकर के देखेंगे तो चाइना का जो इतिहास है उसके बारे में मैंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने लेवल पर बताने की कोशिश की है, चाइना का इतिहास। दोस्तों मैं चाहूंगा कि प्लीज आप उस इतिहास को एक बार जरूर पढ़ें। उस इतिहास को पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि चीन अभी जो कुछ भी कर रहा है किस तरीके से वो अपने ऐतिहासिक चरित्र के आधार पर ही कर रहा है और उसी के तहत आपको ये जो ताइवान की समस्या जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी सी बात करूंगा वहां आपको पता लगेगा कि इनफैक्ट ये ताइवान है क्या। थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो ताइवान है बेसिकली अपने आप में एक तरह से ऑटोनोमस स्टेट जैसा है, लेकिन वो चाइना का हिस्सा भी है। बहुत कम स्टूडेंट को ये मालूम है कि जब हम चाइना कहते हैं तो उसका पूरा नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एक और नाम आपको पढ़ने को मिलेगा रिपब्लिक ऑफ चाइना, यहां पीपल शब्द नहीं है। जब हम कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना तो उसका मतलब होता ताइवान, तो यहां भी चाइना है यानी कि ताइवान कहीं ना कहीं चाइना का हिस्सा है और इसको लेकर के विवाद है ना। ताइवान अपने को स्वतंत्र मानता है, कुछ देश और कुछ करते हैं, तो इसको इसके आधार पर बकायदे चीन ने वन नेशन थ्योरी भी की हुई है कि जो चीन है एक राष्ट्र है जिसमें तिब्बत भी है, जिसमें ताइवान भी है, इन कुछ देशों को लेकर के चलता है। ताइवान तो बेसिकली आईलैंड है और ताइवान के साथ दूसरे और भी छोटे छोटे आईलैंड है। कभी कभी आपको सुनने को मिल जाएगा पेंगू, किनमेन, माथसू, ये छोटे छोटे आइलैंड हैं ताइवान के आसपास ही हैं और अभी ये ताइवान के साथ हैं। तो दोस्तों पहले ताइवान ही जो था वो क्षेत्र प्रमुख था, उसकी राजधानी नानकिंग थी, ये सब आपको उस इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। मैं वहाँ यहाँ डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत संक्षिप्त में बताने से आप खुद भी कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे। तो जो मूल था वो ताइवान ही था। वहाँ बाद में जब 1949 की क्रांति होती है माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में, तो जो लीडर थे वो भाग करके ताइवान चले गए थे और उन्होंने फिर अपना अलग से बना लिया था। तो उसके बाद से 1949 से लेकर के देखिए 1971 तक जो यूएनओ का मेंबर होता था वो ताइवान ही होता था। 1971 में उसकी जो सदस्यता थी वो चाइना को ट्रांसफर की गई, चीन को हस्तांतरित की गई। तो दोस्तों ये थोड़ी सी जानकारी है ताइवान के बारे में, है ना। तो अब ताइवान को कहा जा रहा है कि आप अलग से पर्यवेक्षक बनाइए, चीन इसको कैसे स्वीकार करेगा क्योंकि उसके बिहाव पर चीन तो है, वो तो चीन का हिस्सा है। तो ये संकट है और भारत के सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम इसको लेकर के ये आएगी कि भारत को अब जो WHA है, जो असेंबली जिसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूं, उसका कार्यकारी अध्यक्ष होने जा रहा है। अब क्या करेगा उसका जो बोर्ड है ना, उसके बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष, इसको आप याद रखिएगा। अदरवाइज तो जो WHO के जो महानिदेशक होते हैं वो हेड होते हैं। तो भारत के सामने संकट आएगा भारत और चीन के संबंधों को लेकर के। लेकिन चूंकि अब ये बात बहुत तेजी के साथ उठ रही है तो पृष्ठभूमि आपको मालूम होनी चाहिए और मैं चाहूंगा कि उस लेक्चर को आप जरूर सुन लें। आप ये मत सोचें कि जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे सुनेंगे तब उसके साथ सुनेंगे, नहीं, जब भी ऐसे मौके आते हैं तो आपको वो टुकड़ा निकाल करके सुन लेना चाहिए क्योंकि घटनाएं तो अभी घटित हो रही हैं और आपको इन्हें अच्छे तरीके से यदि समझना है तो उसकी पृष्ठभूमि जाननी चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जो खासकर जनसांख्यिकी लाभ को लेकर के, इकोनॉमिक टाइम्स में ये छपा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर के। इसका मैं आपको हिंदी वर्जन भी आगे चल करके उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में उसे समझ सकते हैं तो मैं चाहूंगा कि वो इसको जरूर पढ़ें और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें। अब मैं आता हूं फ्रेंड्स आज के मुख्य विषय पर और मुख्य विषय है कृषि के क्षेत्र की संभावनाएं। ये जो संभावना शब्द है सच पूछे तो इसको खासकर मैंने अभी जो कोरोना का जो संकट उत्पन्न हुआ है उसको लेकर के है और इस पर बकायदे आज के दैनिक भास्कर ने एक एडिटोरियल कमेंट भी लिखा है और वो कमेंट मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं और आज के मेरे लेक्चर का आधार भी यही है क्योंकि कृषि है और कृषि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, कृषि पर हमेशा 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं इसीलिए कि आपके दिमाग में कृषि का महत्व और उसमें जो अभी बदलाव हो रहा है वो आ सके, तो मैंने आज के मुख्य विषय में के रूप में इसे रखा है। दोस्तों हो क्या रहा है कि अब जितने भी प्रवासी मजदूर थे आप देखिए कि अपने अपने गाँव को लौट रहे हैं ना, अखबारों में आप पढ़ रहे हैं। गाँव में जब ये लौट रहे हैं तो वहां एक बहुत ही सकारात्मक स्थिति कृषि के क्षेत्र में दिखाई दे रही है। पहले देखिए होता क्या था कि जैसे मान लीजिए कि आप बहुत बड़े कृषक हैं और आपके पास 50 एकड़ जमीन है लेकिन वहां मजदूर नहीं मिल रहे हैं। मजदूर इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो सबके सब शहरों में काम करने चले गए हैं। तो आप उस जमीन को क्या करेंगे, बटाई पर दे देंगे, दूसरों को दे देंगे कि भैया ठीक है तुम बोलो इसको पर एकड़ हमें इतना पैसा दे देना या आधा आधा कर लेंगे या जो भी है, इस तरह से आप दे देते हैं। और बटाई पर लेने वाले लोग कौन है, वो छोटे किसान है। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ लघु और जो सीमांत किसान है वही सबसे ज्यादा है, 80-85% तो लघु और सीमांत किसान है। तो छोटे छोटे किसान वो जमीन को ले लेते हैं। अब देखिए इनके पास पूंजी नहीं है तो इनकी जो मूल सबसे बड़ी जो शक्ति होती है, मूल शक्ति, वो श्रम होती है। तो ठीक है खेत जोत रहे हैं, उसमें बीज डाल रहे हैं, फिर मेहनत करके काट रहे हैं, तो उनको थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है। अब चूंकि मजदूर वहां पहुंच गए हैं, प्रवासी मजदूर जो थे गांव में, तो अब वहां चूंकि श्रम की उपलब्धता हो गई है तो एक बात देखने में आ रही है कि जो किसान अपनी जमीन को बटाई पर दे देते थे अब उसे वो खुद बोने के लिए तैयार हो गए, बो रहे हैं। अब ये देखिए चूंकि अब थोड़े से बड़े किसान हैं तो इनके पास पूंजी है, तो सवाल ये नहीं है कि ये ले रहे हैं तो क्या होगा। आखिर में वो जमीन पहले भी बोई जाती थी और वो जमीन अभी भी बोई जाएगी, लेकिन फर्क ये होगा कि ये जो बड़े किसान हैं इनके पास चूंकि पूंजी है तो ये इस पर खेती अच्छे से कर सकेंगे, उसमें खाद डाल सकेंगे, दवाइयां डाल सकेंगे, तो उत्पादकता हमारी बढ़ेगी। ये एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है और ये माना गया है कि जो धान का रकबा है अभी वो धान का रकबा काफी बढ़ गया है। इसका मतलब है कि हमारे जो अनाज का उत्पादन होगा इस साल ज्यादा होगा और केवल अनाज तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि इसका प्रभाव मछली पालन पर पड़ेगा, पशुपालन पर पड़ेगा जिससे दूध का सीधा संबंध है क्योंकि उन क्षेत्रों में भी अब काम ज्यादा होने लगा है, सब्जियां अधिक होंगी, फल अधिक होंगे। तो इस तरीके से कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। फ्रेंड्स, जब आप इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे तो इस एडिटोरियल में उन्होंने एक सजेशन दिया है, वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये मिनिमम आपको मालूम है कि सरकार निर्धारित करती है कुछ फसलों के लिए कि इससे कम में बाजार में इसे नहीं खरीदा जा सकता, और अगर इसका इसकी कीमत इससे कम में है तो सरकार खरीदने के लिए तैयार है ना, ताकि किसानों को नुकसान न हो। दोस्तों, ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो फिक्स किया जाता है, ये इसके तीन सूत्र हैं, तीन फार्मूले हैं, A2 लेवल, FL लेवल और C2 लेवल। ये जो लेवल है ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, और अगर कोई ऑनलाइन का पेड स्टूडेंट है और अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र वाले हिस्से को अगर वो सुन रहा है, अर्थव्यवस्था वाले हिस्से को, तो उसमें बकायदे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर एक इंडिपेंडेंट लेक्चर है जिसमें इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, आप उस लेक्चर को सुन सकते हैं। ये जो तीन लेवल है, इसमें जो पहला लेवल है, इसमें होता क्या है कि किसान की जो लागत लगी है खेती में, जैसे बीज है, खाद है, दवाइयां हैं, सिंचाई है, मजदूरी जो उसने दूसरों को दी, इन लागत को जोड़ लिया जाता है और उस लागत से कुछ बढ़ा करके न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। तो अब आप देखिए कि इसमें बहुत सी चीजें नहीं है। अब होता क्या है फिर जो दूसरे लेवल पर, तो दूसरे लेवल पर में इसको फिर कुछ और ऐड कर दिया जाता है। तो अभी तो जो बाहर से आप मजदूर ला रहे थे केवल उनकी लागत ऐड की जाती है। सेकेंड लेवल में यह है कि कृषक परिवार के जो अपने लोग श्रम कर रहे हैं उनकी भी लागत जोड़ दी जाती है कि ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए कि पहले एक एकड़ में लागत आई थी 1,000 रुपये, तो उसमें जो घर के लोग काम कर रहे थे उनके श्रम का मूल्य नहीं जुड़ा था। दूसरे फार्मूले के तहत कि अच्छा घर के लोग भी काम कर रहे तो चलो 200 रुपये इनका है तो जोड़ दिया जाए तो 1,200 रुपये। तो देखिए अगर 1,000 रुपये लागत आई है तो सरकार फिक्स कर देगी कि 1,200 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेकिन अगर 1,200 रुपये लागत आई है तो फिर सरकार को 1,200 से तो ऊपर करना पड़ेगा ना, तो 1,400 कर देगी। एक तीसरा फार्मूला है जिसके लिए बहुत जबरदस्त रूप से वकालत की जा रही है और मांग भी की जा रही है और जो बहुत सही भी है। अब इसमें देखिए क्या है कि अभी तक जो लागत हमने ऊपर के दोनों में देखा कि खाद, बीज, दवाई, मजदूरी, सिंचाई और घर के जो सदस्य काम कर रहे हैं उनके भी श्रम का मूल्य जोड़ दिया जाए, प्लस अब देखिए खेती के लिए उसने ऋण लिया हुआ है, ऋण पर वो ब्याज दे रहा है तो ब्याज भी जोड़ना चाहिए, क्यों नहीं जोड़ना चाहिए। फिर देखिए उसकी जमीन है, मान लीजिए कि उस जमीन की कीमत 10 लाख रुपये है, ठीक है, तो 10 लाख रुपए तो उसकी कैपिटल हो गई ना, पूंजी हो गई, तो उस 10 लाख रुपए के बदले में उससे कितना ब्याज मिलता वो भी तो जुड़ना चाहिए ना, क्योंकि अगर वो अपनी जमीन को बेच करके 10 लाख रुपए बैंक में जमा कर दे तो हर साल उसको उसका ब्याज मिलेगा, तो उसकी पूंजी तो वही है ना, तो उसकी कीमत भी जुड़नी चाहिए। तो यहां जो सजेशन दिया गया है वो है कि सरकार जब न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है तो वो C2 लेवल पे निश्चित करे, क्योंकि जब वो ऐसा करेगी तो इससे जो फसल है, जो खाद्यान्न पदार्थ हैं, उनके मूल्य अधिक होंगे, इससे ही किसानों को सही मायने में लाभ होगा, तभी हमारा जो कृषि का क्षेत्र है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सकेगा। अदरवाइज इसमें डेटा भी दिया हुआ है कि अभी हालत यह है कि डेली 2,000 किसान खेती का काम छोड़ रहे हैं, और ये बहुत पहले से ये बात चल रही है, और कितने किसान आत्महत्या करते हैं इसकी दुर्भाग्यजनक घटनाओं की खबरें आप अखबारों में पढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है और ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं राकेश कुमार गुप्ता जौनपुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद रफी, मोनिका अहुलाना हरियाणा से, आशु जायसवाल, रविन्द्र गोस्वामी और राहुल कुमार, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज के डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करूं, आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अपना ध्यान रखें, साहस बनाए रखें, जो भी सावधानियां बरती जानी चाहिए कोरोना को लेकर वे सावधानियां बरतें, हताश निराश बिल्कुल भी न हों, मन में सकारात्मक भाव लाएं, और आप जो काम कर रहे हैं अपने काम में पूरे जोश खरोश के साथ निराशा को दूर करते हुए लगे रहें, जुटे रहें, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, अभिवादन भी। नमस्कार, 3 दिनों के बाद फिर मिलेंगे।